लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है मंगोलिया में संत पापा फ्रांसिस की प्रेरित यात्रा पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट। मंगोलिया की राजधानी उलान बतार में अपनी प्रेरित यात्रा के दूसरे दिन शनिवार को कैथोलिक कलीसिया के परम धर्म गुरु संत पापा फ्रांसिस ने दो विश्व शक्तियों रूस और चीन के बीच फंसे देश में बोलते हुए नेताओं से युद्ध के काले बादलों को दूर करने का आह्वान किया। मंगोलिया में अपने पहले कार्य दिवस पर राजकीय महल के भीतर आयोजित आधिकारिक मुलाकातों से पूर्व संत पापा फ्रांसिस ने एक विस्तृत आउटडोर स्वागत समारोह में भाग लिया, जिसमें सदियों से चली आ रही परेड तथा आधुनिक पोशाकें धारण किए सैनिकों सहित प्राचीन मंगोल योद्धाओं की तरह घुड़सवार शामिल थे। समारोह के दौरान संत पापा पारंपरिक वस्त्र, चौड़ी किनारी वाली मंगोल टोपी और जूते पहने मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख के साथ बैठे। बाद में दोनों ने राजकीय महल के अंदर स्थापित खाना बदोशों द्वारा प्रयुक्त गोलाकार गेर में निजी तौर पर मुलाकात की। गोपनीयता की परंपरा का पालन करते हुए इस मुलाकात का विवरण नहीं दिया गया है, तथापि वैटिकन और मंगोलियाई अधिकारियों द्वारा जारी वक्तव्य में कहा गया कि मुलाकात सौहार्दपूर्ण माहौल में सम्पन्न हुई। शांति और भ्रष्टाचार के घातक खतरों को समाप्त करने की अपील के साथ एशियाई राष्ट्र की अपनी पहली यात्रा की शुरुआत करते हुए संत पापा फ्रांसिस ने मंगोलिया के संस्थापक जेंजिस खान के समय से चली आ रही धार्मिक स्वतंत्रता से परिपूर्ण परंपरा की भूरी भूरी प्रशंसा की। संत पापा फ्रांसिस ने मंगोलिया के राष्ट्रपति भवन के भीतर स्थापित एक पारंपरिक मंगोलियाई गेर या गोल यर्ट के अंदर राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख से मुलाकात की और अतिथि ग्रंथ में एक संदेश लिखकर अपने मंगोलियाई दौरे का उद्देश्य बताया। उन्होंने लिखा कि शांति के तीर्थयात्री रूप में वे मंगोलिया की यात्रा कर रहे थे, जो एक युवा तथापि प्राचीन और आधुनिक परंपराओं से समृद्ध देश है। 86 वर्षीय संत पापा फ्रांसिस शुक्रवार को मंगोलिया पहुंचे थे और समय के अंतर से अभ्यस्त होने के लिए उन्होंने दिन भर आराम किया। मंगोलिया में यह किसी कैथोलिक परमाध्यक्ष की पहली यात्रा है। संत पापा फ्रांसिस की यह 43वीं विदेश यात्रा है, जिसका प्रमुख उद्देश्य विश्व के सर्वाधिक छोटे कैथोलिक समुदाय को उसके विश्वास में सुदृढ़ करना था। मंगोलिया में कैथलिकों की संख्या मात्र 1,400 है। राष्ट्रपति सरकारी नेताओं और राजनयिक कोर के समक्ष किए गए एक प्रभाषण में संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि वे मैत्री के तीर्थयात्री हैं, जो एक शांत वातावरण में उनके पास पहुंचे थे। मंगोलियाई इतिहास के प्रति अभिमुख होते हुए उन्होंने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कराया कि चीन के उत्तर में स्थित विशाल देश जेंजिस खान के जन्म की 860वीं वर्षगांठ मना रहा है, जिन्होंने मंगोलियाई जनजातियों को एकजुट किया था तथा शांति की अवधि की स्थापना की थी, जिसे पाक्स मंगोलिका के नाम से जाना जाता है। उन्होंने राष्ट्रपति को 1246 ईस्वी में संत पापा इनोसेंट चतुर्थ द्वारा तीसरे मंगोल सम्राट गुयुक को भेजे गए औपचारिक पैगाम की एक प्रति भी भेंट स्वरूप अर्पित की। आधुनिक मुद्दों के प्रति ध्यान आकर्षित कराते हुए संत पापा ने कहा, स्वर्ग अनुदान दे कि आज अनगिनत संघर्षों से तबाह होती इस धरती पर एक ऐसा नवीनीकरण हो जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान किया जाए। शनिवार को एक ट्वीट संदेश प्रकाशित कर संत पापा ने लिखा, युद्ध के काले बादल दूर हो जाएं, सार्वभौमिक भाईचारे की दृढ़ इच्छा से ये काले बादल छट जाएं, ताकि मुलाकातों और बातचीत के माध्यम से तनाव का समाधान किया जा सके और सभी लोगों के मौलिक अधिकारों की गारंटी दी जाए। संत पापा फ्रांसिस ने कठोर शब्दों में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की निंदा की है तथा इस युद्ध की समाप्ति और युद्ध पीड़ितों की मानवतावादी सहायता की बहाली के लिए अपने विशेष दूत कार्डिनल मातेओ ज़ुप्पी को कीव, वाशिंगटन और मॉस्को प्रेषित किया है। बीजिंग में भी कार्डिनल ज़ुप्पी की यात्रा तय है। सन 1921 तक मंगोलिया चीन का हिस्सा रहा था और मंगोलिया की चीन से निकटता की वजह से ही इन दिनों विश्व का ध्यान बीजिंग के साथ वेटिकन के कठिन संबंधों की ओर आकर्षित हुआ है। दोनों पक्षों ने 2018 में कैथोलिक धर्माध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन बीजिंग ने तब से कई बार इसका उल्लंघन किया है। मंगोलिया में 1 सितंबर से 4 सितंबर तक जारी अपनी प्रेरितिक यात्रा के लिए शुक्रवार को रोम से रवाना होते हुए संत पापा फ्रांसिस ने अपने रास्ते में पड़ने वाले चीन को भी एक तार संदेश प्रेषित कर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लिखा था कि उनकी शुभकामनाएं संपूर्ण चीनी लोगों के साथ हैं। इसके प्रत्युत्तर में चीन के अधिकारियों ने कहा है कि वे वेटिकन के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं।
संत पापा फ्रांसिस ने मंगोलिया की अपनी प्रेरितिक यात्रा के दूसरे दिन उलन बातर में मंगोलिया के राजनयिकों से मुलाकात करते हुए विश्व शांति में मंगोलिया की सहयोगिता हेतु उनकी प्रशंसा की। मंगोलिया और वेटिकन के बीच 777 वर्षीय पुराने राजनयिक संबंधों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, जब हम मित्रों के घर में प्रवेश करते हैं तो हम अपनी श्रेष्ठ परंपरा के अनुसार उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। सन 1246 में पियांदेल कारपीने के पुरोहित जोन ने संत पापा के संदेश वाहक स्वरूप तृतीय मंगोली सम्राट गुयुग से भेंट करते हुए संत पापा इनोसेंट चतुर्थ का आधिकारिक संदेश प्रदान किया। इसके तुरंत बाद महान खान की मोहर अंकित पारंपरिक मंगोली पत्र प्रत्युत्तर स्वरूप लिखा गया, जिसे विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया। संत पापा ने इसे प्राचीन मित्रता की एक निशानी कही, जो सदैव विकसित और नवीन होती है। मंगोलिया की प्रथा, जहां गांव के बच्चे अपने गेर के द्वार पर खड़े होकर अपने पशुओं के सिरों की गिनती करते और उनकी संख्या को अपने अभिभावकों को बतलाते हैं। संत पापा ने कहा कि उसी प्रकार हम अपने विस्तृत वैश्विक क्षितिज को निहारते हैं, जिसकी शिक्षा गेरों से मिलती है। उन्होंने मंगोलिया की भौगोलिक और प्राकृतिक समृद्धि सुंदर छटा की प्रशंसा की, जो स्वतः ही लोगों को अपनी ओर आने का निमंत्रण देती है। आप हमें ईश्वरीय सृष्टि की प्रशंसा और उसकी देखरेख करने में मदद करते हैं, जैसे कि ख्रिस्तीय विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा, मंगोलिया विश्व शांति हेतु महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अदा करता है। मंगोलियाई कहावत, बादल छट जाते हैं लेकिन आसमान रह जाता है, को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि युद्ध के बादल हमारे बीच से छट जाएं और हम वार्ता के जरिए एक भ्रातृत्व में विश्व का निर्माण कर सकें, जहां सबों के मूलभूत अधिकारों का सम्मान होता है। संत पापा ने आंखों को नीले आकाश की ओर उठाने का आह्वान किया, जिसका अर्थ विनम्रता के मनोभावों को धारण करते हुए धार्मिक शिक्षा हेतु खुला रहना है। यह मंगोलिया की सांस्कृतिक विरासत है, जो धार्मिक स्वतंत्रता की निशानी है। संत पापा ने कहा कि यहाँ के लोगों ने उत्तम आध्यात्मिकता के मनोभाव को अपने में विकसित किया है, जो आंतरिक शांति की ओर हमारा ध्यान इंगित कराता है। संत पापा ने मंगोलिया के प्राचीन नेताओं की प्रशंसा की, जिन्होंने विभिन्न आवाजों और अनुभवों के माध्यम देश को धार्मिक एकता में पिरोए रखा, जिसे हम पुरानी राजधानी खारखोरूम में विभिन्न आराधनालय स्थलों के रूप में देखते हैं। इस कारण देश में विचार और धर्म की स्वतंत्रता हासिल की गई, जिसे देश के संविधान में अंकित किया गया है। वहीं उन्होंने मंगोलिया में ख्रिस्तीय अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति अपनी खुशी के भाव प्रकट किए, जो देश के विकास और एकता में संस्कृति के विस्तार, वैश्विक सम्मान और अंतरधार्मिक वार्ता, जो न्याय हेतु कार्य करता है, जो शांति और सामाजिक एकता के रूप में प्रकट होता है। उन्होंने इस बात की आशा व्यक्त की कि समर्पित नर और नारियों की सहायता से, जो देश के लिए जरूरी है, वे मंगोलिया और वहां के लोगों की भलाई के लिए अपनी सेवा अर्पित करेंगे। इस संदर्भ में उन्होंने वेटिकन और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय समझौता की चर्चा की, जो कलिस्स को शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सहायता, शोध और सांस्कृतिक विकास के कार्य में मदद करेगा।
Il motto scelto per questo viaggio sperare insieme esprime proprio la potenzialità insita nel camminare con l'altro.
अपने प्रेरितिक यात्रा के आदर्श वाक्य एक साथ आशा करना की ओर ध्यान केंद्रित कराते हुए संत पापा ने कहा कि यह पारस्परिक सम्मानजनक और सहयोगपूर्ण यात्रा का हाल प्रस्तुत करता है जो सबों की भलाई हेतु है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि मंगोलिया के ख्रिस्तीय देश की समृद्धि और विकास हेतु अपना योगदान देना जारी रखेंगे। आप आसमान की तरह हों, एक प्रसिद्ध कवि के ये शब्द हमें भौतिकता से ऊपर उठने का आह्वान करते हैं और आकाश की तरह ऊंचा होने का निमंत्रण देते हैं। मंगोलिया का समाज विश्व को सुंदर चीजें देने हेतु प्रतिबद्ध रहे, जैसे कि आपकी पारंपरिक लिपि सीधी है।
मंगोलिया में अपनी यात्रा के दौरान संत पापा फ्रांसिस ने पर्यावरण के ह्रास के प्रति एक बार फिर विश्व का ध्यान आकर्षित कराया। शनिवार को उलान बतार राजमहल में प्रभाषण करते हुए उन्होंने कहा कि मूल मंगोलियाई खानाबदोश परंपराएं प्रकृति के नाजुक संतुलन का सम्मान करती रही हैं, लेकिन आज पर्यावरण पर हो रहे मानव विनाश के प्रभावों का मुकाबला करने की नितांत आवश्यकता है। मंगोलिया जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित देशों में से एक है, जहां 1940 के बाद से औसतन तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ गया है तथा उलानबतार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक बताया गया है, जिसका मुख्य कारण सर्दियों में कोयला जलाना है। लंबे समय से वर्षा की कमी के कारण मंगोलिया की लगभग 3/4 भूमि मरुस्थलीकरण और सूखे से ग्रस्त हो गई है तथा 1980 के बाद से 200 से अधिक छोटी छोटी झीलें भी सूख गई हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अत्यधिक चराई से पारिस्थितिक समस्याएं बढ़ गई हैं तथा लगभग 8 करोड़ जानवर उत्तर जीविता की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा खनिज संसाधनों को अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के एकमात्र तरीकों में से एक माना जाता है, किंतु खनिजों के अत्यधिक दोहन ने दुर्लभ जल आपूर्ति पर भी दबाव डाला है। संत पापा फ्रांसिस ने इस सप्ताह बुधवार को घोषणा की थी कि वे प्रकृति की सुरक्षा के प्रति लोगों को सचेत करने के लिए 2015 में प्रकाशित अपने ऐतिहासिक विश्व पत्र लाउदातो सी का दूसरा भाग जल्द ही प्रकाशित करेंगे। उलान बतार में शनिवार को संत पेत्रुस और संत पॉलुस को समर्पित महागिरजाघर में संत पापा फ्रांसिस ने मंगोलिया के लघु कैथलिक समुदाय के धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म समाजियों, धर्म संघियों और प्रेरितिक कार्यकर्ताओं का साक्षात्कार कर उन्हें अपना संदेश दिया। विश्व के इस क्षेत्र में हालांकि ईसाई धर्म सैकड़ों वर्षों से मौजूद है, तथापि कैथलिक कलीसिया की मंगोलिया में केवल 1992 से स्वीकृत उपस्थिति है, जब देश ने अपनी सोवियत सहयोगी कम्युनिस्ट सरकार को छोड़ दिया था और अपने संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता को पुनः स्थापित किया था। संत पापा फ्रांसिस ने मंगोलिया की धार्मिक स्वतंत्रता की सराहना की है और इस तथ्य के प्रति ध्यान आकर्षित कराया है कि ऐसी सहिष्णुता दुनिया के अधिकांश हिस्सों में मंगोलियाई साम्राज्य के विशाल विस्तार के दौरान भी मौजूद थी। रूस और चीन के बीच फंसे बौद्ध बहुल देश मंगोलिया के तिब्बत और विशेष रूप से दलाई लामा के साथ पारंपरिक संबंधों के संदर्भ में संत पापा ने सरकारी अधिकारियों और राजनयिकों के समक्ष राजमहल में किए प्रभाषण में कहा, यह तथ्य कि साम्राज्य सदियों से इतनी दूर और विविध भूमि का आलिंगन कर सकता था, आपके पूर्वजों की अपने विशाल क्षेत्र में मौजूद लोगों के उत्कृष्ट गुणों को स्वीकार करने और उन गुणों को एक सामान्य विकास की सेवा में लगाने की उल्लेखनीय क्षमता का गवाह है।
पोप फ्रांसिस ने शनिवार को मंगोलिया की प्रेरित यात्रा में उलनबातर के संत पेत्रुस एवं संत पॉलुस महागिरजा घर में देश के धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, मिशनरियों, धर्म सामाजियों एवं प्रचारकों से मुलाकात की तथा याद दिलाया कि यीशु ही सुसमाचार है और कलीसिया को उन्हीं की घोषणा करना है। संत पापा ने मिशनरियों की प्रेरिताए के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा, धन्यवाद आप सभी को आपकी उपस्थिति एवं आपके विश्वास के लिए। सुसमाचार के आनंद ने आपको समर्पित जीवन जीने और दूसरे भाई बहनों के साथ यहाँ रहने तथा प्रभु एवं लोगों की सेवा करने के लिए प्रेरित किया है। मंगोलिया की कलीसिया में शुरू से मिशनरियों के योगदान की याद करते हुए संत पापा ने कहा, हम मंगोलिया में सुसमाचार के सभी विश्वस्त सेवकों की याद करते हैं, पर किसी व्यक्ति को सुसमाचार के लिए क्यों जीवन व्यतीत करना है? उन्होंने उत्तर देते हुए कहा, खासकर इसलिए क्योंकि हमने अपने जीवन में ईश्वर के प्रेम की कोमलता को चखा है। वही ईश्वर जिन्होंने अपने आप को यीशु में दृश्यमान, स्पर्श योग्य और मुलाकात करने योग्य बना दिया है। जी हाँ, यीशु सुसमाचार है, सभी के लिए एक संदेश है जिसकी घोषणा कलीसिया को अपने जीवन एवं उपासना से करना है। ख्रिस्त में ईश्वर के प्रेम की अनुभूति वह विशुद्ध प्रकाश है जो हमारी मुखाकृति को प्रकाशित करती और बदल देती है। संत पापा ने कहा कि ख्रिस्त जीवन का जन्म ईश्वर के चेहरे पर चिंतन करने से हुआ है। यह प्रेम, ईश वचन और जीवन की रोटी में प्रभु से दैनिक मुलाकात और गरीबों एवं जरूरतमंद लोगों के चेहरे पर यीशु को देख पाने से उत्पन्न हुआ है। मंगोलिया में 31 वर्षों की उपस्थिति में आपने विभिन्न प्रकार के उद्धार कार्यों को शुरू किया है जो अच्छे सामरी के रूप में ख्रिस्त के दयालु चेहरे को दर्शाता है। मंगोलिया के मिशनरियों को अपने मिशन को आगे ले जाने हेतु प्रभु से जुड़े रहने की सलाह देते हुए संत पापा ने कहा, मैं आपसे प्रभु को चखने और देखने का आग्रह करता हूँ, उस मूल दृष्टि पर लौटते रहने के लिए जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ है। अन्यथा हमारी शक्ति कमजोर पड़ जाएगी और हमारे प्रेरित कार्य खाली सेवा अथवा कर्तव्य पूरा करने का जरिया मात्र होने के खतरे में पड़ जाएगा। पर जब हम ख्रिस्त के चेहरे से मिलते, सुसमाचार में उनकी खोज करते, पौत्र संस्कार के सामने मौन प्रार्थना में उन पर चिंतन करते हैं, तब हम उन्हें उन लोगों के चेहरे पर देख सकेंगे जिनकी हम सेवा करते हैं और आंतरिक आनंद महसूस करेंगे जो कठिनाइयों के बीच भी हमारे दिलों को शांति प्रदान करेगी। संत पापा ने मिशनरियों को अपने मुख्य कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते हुए कहा, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को दुनिया में भेजा राजनीतिक सिद्धांतों के प्रचार के लिए नहीं, लेकिन अपने जीवन से पिता के साथ अपने संबंध की नवीनता का साक्ष्य देने के लिए भेजा। यह हर एक व्यक्ति के साथ भाईचारा का ठोस स्रोत है। कलीसिया की उत्पत्ति इसी आदेश से हुई है। यही कारण है कि सरकार और सरकारी संस्थानों को कलीसिया के सुसमाचार के कार्यों से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि इसके पास आगे बढ़ने के लिए कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, बल्कि ईश्वर की कृपा, करुणा और साक्ष्य के संदेश की शक्ति है जो सभी की अच्छाई को बढ़ावा देती है। इस मिशन को जारी रखने के लिए ख्रिस्त ने अपनी कलीसिया की स्थापना की है और वे ही इसके शीर्ष हैं। संत पापा ने मंगोलिया की कलीसिया के प्रेरित कार्य में समर्पित लोगों एवं ख्रिस्तों को प्रोत्साहन दिया कि वे अपने वरदानों एवं अपने आप को ख्रिस्त को समर्पित करने की सुंदरता को पहचानें, जो उन्हें मंगोलिया में अपने प्रेम का साक्ष्य देने के लिए कहता है। संत पापा ने कहा कि आप से एकजुटता एवं जीवन में सरलता विकसित कर लोगों के करीब रहकर उनकी देखभाल कर अपने जीवन के उदाहरण द्वारा यीशु को लाकर पूरा कर सकते हैं।
और इसी के साथ वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।